अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है मृग तृष्णा। दरवाजा तोड़ते ही जो दृश्य रागिनी देवी ने देखा, उसे देखते ही वो चीख मार कर बेहोश हो गई। लोगों ने देखा एक नर कंकाल जिसकी हड्डियां तक गल गल कर पिघल सी रही थीं, दरवाजे से सटा पड़ा था। उसकी आंखों की जगह दो गड्ढे दिखाई दे रहे थे। ऐसा भयानक और विभत्स दृश्य देखकर सभी जड़ हो गए। उस ढांचे से पता नहीं चल रहा था कि शव किसका है, पर घर के नौकर और रागिनी देवी जानती थीं कि ये शव प्रसिद्ध व्यवसायी अरुण कुमार का है। अरुण कुमार के पिता अथाह संपत्ति छोड़कर मरे थे। अरुण कुमार की बहन रागिनी देवी, जो अविवाहित थी, उन्हीं के संग रहती थी। भाई बहन में बहुत पटती थी। अरुण कुमार सीधे सादे व्यक्ति थे, उन्हें किसी चीज की लत नहीं थी। रागिनी देवी उनके लिए उपयुक्त लड़की की तलाश में थी, पर वो टाले जा रहे थे। वो डरते थे कि अगर उनकी पत्नी झगड़ालू प्रवृत्ति की हुई तो उनकी बहन को कष्ट दे सकती है। अरुण कुमार के परदादा किसी बहुत बड़ी रियासत में राज वैद्य थे। उस जमाने में उनकी वैद्यगी की धूम थी। किंवदंती तो यहां तक थी कि जिंदा को वो मार सकते थे और मृतक को नवजीवन दे सकते थे। एक से एक बढ़कर अचूक दवाओं का भंडार था उनके पास। अरुण कुमार के परदादा ने बहुत कोशिश की कि उनके पुत्र यानी अरुण कुमार के दादाजी भी यही विद्या सीख कर यश कमाए, पर धीरे धीरे समय बहुत बदल रहा था। लोगों की रुचि वैद्य के उपचार से हटती जा रही थी। इनके दादाजी ने अपना स्वतंत्र व्यवसाय आरंभ कर दिया, जिसमें उन्हें काफी सफलता मिली। इसी व्यवसाय को अरुण कुमार के पिता ने चलाया और उनकी मृत्यु के उपरांत अरुण कुमार ने उसी व्यवसाय को अपनाया। पीढ़ियों से व्यवसाय का माहौल होते हुए भी अब भी एक बड़े कमरे में कई अलमारियों में परदादा जी की दवाइयों की शीशियां, मोटे मोटे ग्रंथ तथा भोज पत्र भरे पड़े थे। किसी ने उनकी चीजों को हाथ नहीं लगाया था। एक प्रकार से वो कमरा परदादा जी की स्मृतियों को चिरस्थायी रखे हुआ था। वो अमूल्य ग्रंथ वैसे ही पड़े थे, क्योंकि समय के संग संग लोगों का विश्वास एलोपैथिक दवाइयों में जमता चला जा रहा था। अरुण कुमार की बहन रागिनी देवी एक विदुषी महिला थी। वो अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने में व्यतीत करती थी। घर का सभी इंतजाम उन्हीं के जिम्मे था। कभी कभी उन्हें जिज्ञासा होती थी कि इतने बड़े बड़े पोथे उनके परदादा ने इकट्ठे किए हैं, उनमें जरूर कुछ ऐसा है जिसे अपने जीवन काल में उन्होंने बड़ा सहेज कर रखा था और मरते समय अपने बेटे यानी अरुण कुमार के दादाजी को कड़ी हिदायत दे रखी थी कि वो अलभ्य पुस्तकें उनकी मौत के पश्चात भी बहुत संभाल कर रखी जाएं। दादाजी ने मरते समय अरुण कुमार के पिताजी को भी यही आदेश दे रखा था और अपने अंत समय में अरुण कुमार के पिता ने अपने पुत्र और पुत्री को इन अलभ्य ग्रंथों को संभाल कर रखने का आदेश दिया था। जिन ग्रंथों के पुरातन काल से सहेज कर रखने की आज्ञा मिली हो, उन्हें पढ़ने की जिज्ञासा होते हुए भी दोनों भाई बहन की रुचि न होने के कारण वो अलमारियों में बंद पड़े थे। अरुण कुमार तथा रागिनी देवी शाम को क्लब जाते थे। क्लब में ताश तथा टेनिस जैसे खेलों में वे दोनों ही भाग लेते थे। जुआ, शराब इत्यादि व्यसनों से वे कोसों दूर थे। एक रात जब अरुण कुमार घर लौटे तो उनका सिर भारी हो रहा था। थोड़ी देर बाद उनका जी मिचलाने लगा। उन्होंने सोचा कि कोई चूरन मिल जाता तो तबीयत ठहर जाती। इधर उधर निगाह दौड़ाने पर उन्हें कहीं चूरन दिखाई नहीं पड़ा। यकायक उन्हें ख्याल आया कि परदादा जी के कमरे में चूरन जैसे पदार्थ की कई शीशियां उन्होंने देखी थीं। उन्होंने सोचा उनके परदादा जी अपने समय के ख्याति प्राप्त राजवैद्य थे। किंवदंती तो ये थी कि वो मिनटों में ऐसे रोगों को दूर कर देते थे। आज क्यों न इसकी परीक्षा कर ली जाए। सभी शीशियों पर कुछ न कुछ लिखा था जो वे समझ नहीं पाए। एक शीशी पर कुछ नहीं लिखा था, उसमें चूरन जैसा पदार्थ भरा था। उंगली में जरा सा वो पदार्थ लेकर उन्होंने जीभ पर रखा। रखने के संग ही उन्हें लगा जैसे सब कष्टों से छुटकारा पा चुके हैं। इतना आनंद तो उन्हें आज तक नहीं मिला था। आनंद में झूमते झूमते वो अपने कमरे में आए और पलंग पर लेट गए। वो रात उनके लिए इतनी आनंददायक रही जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह उठे तो रोज से ज्यादा आनंद और स्फूर्ति महसूस की। मन ही मन वो परदादा जी की वैदगी से कायल हो गए। दूसरे दिन क्लब से लौटने के पश्चात उन्हें लगा वो शीशी उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। उन आनंददायक क्षणों को फिर से भोगने के लिए वो लालायित हो उठे। वो सीधे उस कमरे में गए और सोचा, क्यों ना पूरी शीशी लेते चलें, जरा जरा रोज रात को चख कर सुख की नींद सोएंगे। उस आनंद की कल्पना करके वो मुस्कुरा उठे। उस चूर्ण को चाटने के बाद वो उस सुख की अनुभूति करने लगे जिसे महसूस तो किया जाता है पर वर्णन करना सरल नहीं होता। 4 महीने बीत गए। अब अरुण कुमार को कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था। वो अपने कमरे में पड़े उसी सुख की अनुभूति करते। उन्हें लगने लगा कि इसी कमरे में उनका स्वर्ग है। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी शक्ल में परिवर्तन हो रहा है। आंखों के नीचे स्याह धब्बे पड़ गए हैं, आंखें धस गई हैं, शरीर की कांति लुप्त सी हो रही है। पर उस सुख के आगे उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। अब उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। बहन ने कई डॉक्टरों को बुलाया पर कमरे में बंद अरुण कुमार ने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया, बल्कि बहन को भी डांट कर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे परेशान मत करो। बहन रागिनी देवी सिसक उठी। एक ही तो भाई था जिसे वो अत्यधिक प्यार करती थी। उसकी रुखाई से उन्हें हार्दिक दुख हुआ। भरसक वो अरुण कुमार को हर प्रकार का आराम देने को व्याकुल रहती थी। चूर्ण की शीशी को अरुण कुमार सतृष्ण नेत्रों से ताका करते। जीवन में अब उन्हें किसी चीज की आकांक्षा नहीं रही। वो महसूस करने लगे कि ये जरा सा चूर्ण जीप पर रखते ही उन्हें प्रतीत होता है मानो संसार का समस्त सुख वैभव उनके पैरों तले आ गया है। अब वो शेव भी नहीं करते। शीशे में मुंह देखना भी उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि दिनों दिन उनका चेहरा भयंकर होता जा रहा था। आंखें धंसती जा रही थीं, शरीर कंकाल होता जा रहा था, रंग काला हो गया था। अपनी सूरत एक दिन शीशे में देखकर वो स्वयं नहीं पहचान पाए कि ये वो अरुण कुमार हैं। एक डरावनी आकृति उन्हें शीशे में नजर आई। महीनों से उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। बहन से उन्होंने कह रखा था कि खिड़की पर उनका खाना रख दिया जाए, वो वहीं से उठाकर खा लेंगे। खिड़की पर खाना कई कई दिनों तक पड़ा रहता था। उससे उनकी रुचि हटती जा रही थी। रागिनी देवी का चिंता के मारे बुरा हाल था। रो रो कर दरवाजा खुलवाने की याचना करती पर हर बार अरुण कुमार उन्हें धुतकार देते। मोह ममता सभी को वो तिलांजलि दे चुके थे। बस एक ही चीज से उन्हें लगाव था और वो थी चूर्ण की शीशी। अब वो चल फिर भी नहीं पाते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि जब वो पानी पीने के लिए भी नहीं उठ पाए। कई दिन जब कमरे में किसी प्रकार की आहट नहीं मिली तो रागिनी देवी घबरा उठी। उन्होंने अरुण कुमार को बहुत आवाजें दी। ऐसा लगा कि कोई घिसट रहा है, फिर सब शांत। नौकरों से दरवाजा तुड़वाया गया तो रागिनी देवी तथा नौकरों ने ये भयानक दृश्य देखा। डॉक्टरों को बुलाया गया पर कोई कुछ बता नहीं पाया। शव की हड्डियां तक गल गई थीं। होश आने पर रागिनी देवी बिलख बिलख कर रोने लगीं। थोड़ा चैतन्य होने पर उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसे खाने के कारण अरुण कुमार की ऐसी दर्दनाक मौत हुई है। वो उठकर खड़ी हुई और उन्होंने बारीकी से कमरे का निरीक्षण किया ताकि कोई नई चीज उन्हें दिखाई पड़े तो वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। यकायक उनकी दृष्टि मेज पर रखी एक पुराने जमाने की शीशी पर अटक गई। उन्हें याद आया कि इस प्रकार की शीशी तो उन्होंने परदादा जी के कमरे में देखी थी। वो भागी भागी परदादा जी के कमरे में पहुंची। वहां देखा कि जहां शीशियां रखी थीं वहां पर स्थान खाली था। वो समझ गई कि इसी स्थान से अरुण कुमार ने शीशी उठाई थी और इसमें रखे पदार्थ का सेवन किया था। वो अरुण कुमार के कमरे में लौटी और शीशी को संभाल कर रख दिया। सभी शीशियों में लेबल लगे थे। एक यही ऐसी शीशी थी जिस पर कुछ नहीं लिखा था। रागिनी देवी उलझन में पड़ गई कि आखिर इस शीशी पर दवा का नाम क्यों नहीं लिखा है। बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उनकी खोज अब सरल हो जाएगी। इस शीशी में भरे पदार्थ के रहस्य का पता अब वो लगा लेंगी। अब उनका काम था उन अलभ्य ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन करना। कई महीने अध्ययन करने के बाद एक स्थान पर उनकी दृष्टि अटक कर रह गई। वहां एक खास प्रकार का निशान था। वहां लिखा था, जब शत्रु को मारने में विषकन्या भी असफल हो जाती है तब यह चूर्ण किसी प्रकार शत्रु तक पहुंचाया जाता है। एक बार वो इस पदार्थ को जीभ पर रखकर चख लेता है तो इसे मृत्यु तक छोड़ता नहीं है। शत्रु की मृत्यु अत्यंत भयानक तथा कष्टदायक होती है। ये दवा शत्रु को तिल तिल कर मारती है। अंत समय तक ज्ञात नहीं होता कि मनुष्य की मौत का कारण क्या था। इस दवा को अरुण कुमार के परदादा ने बनाया था। इसी दवा के कारण उनकी शोहरत में चार चांद लग गए थे। बड़े बड़े राजा उनकी वैद्यकी के कायल थे। जिस राजा के संरक्षण में वो रहते थे वो उन्हें बहुत सम्मान करते थे। एक बार इस चूर्ण का सेवन करने के पश्चात इसे छोड़ना असंभव था। ये चूर्ण अचूक था। मनुष्य की मौत अवश्यंभावी थी। ये मृत्यु इतनी भयानक थी जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। रागिनी देवी ने सिसकते सिसकते एक बार उस शीशी को आग्नेय नेत्रों से देखा, फिर उस पदार्थ को उन्होंने शीशी समेत आग में झोंक दिया। काश उन्होंने पहले इन ग्रंथों का अध्ययन कर लिया होता तो वो दर्दनाक मौत न होती। उनके परदादा ने न जाने कितने लोगों को इतनी भयानक मौत दी होगी। उसी पाप के कारण आज उनका परपोता उन्हीं के हाथों मारा गया। विधि का विधान कौन जान सकता है। आज रागिनी देवी की समझ में आया कि आजकल जो ड्रग्स लोग ले रहे हैं वो इसी चूर्ण का प्रतिरूप है। स्मैक, हशीश इत्यादि ने दुनिया को मस्त कर रखा है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो कई सौ साल पहले इजाद हो चुकी थी, पर सर्वसाधारण को इसका पता नहीं था। ये दवा केवल शत्रु को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, पर आज वही चीज सर्वसाधारण के बीच फैलती जा रही है। एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो चोरी डकैती जैसे निकृष्ट कार्य करते हैं, क्योंकि वे इसके बिना रह नहीं पाते। ड्रग्स के दुष्परिणाम को जानते हुए भी लोग इसके पीछे पागलों के समान भागे जा रहे हैं। लाखों लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, फिर भी लोग चेतते नहीं। शायद ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों का अंत भी अरुण कुमार जैसा होने वाला है। कुछ लोगों ने इसे व्यवसाय बना लिया है। वे दुनिया के कोने कोने में इसका प्रसार कर रहे हैं। बिना किसी मेहनत के वे लाखों कमा रहे हैं। दूरदर्शन, रेडियो सभी पर आगाह किया जा रहा है, पर स्थिति संभल नहीं रही है। स्कूल के बच्चों को भी इस महामारी ने अपने चंगुल में कर लिया है। इस बीमारी का इलाज ठीक समय पर कर लिया जाए तो मनुष्य ठीक हो सकता है, पर इसके लिए दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। रागिनी देवी ने एक दीर्घ निश्वास लिया। उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय की आभा तैर गई। नौकरों को बुलाकर उन्होंने परदादाजी के कमरे में रखी सभी शीशियों को नष्ट करवा दिया। उनके अलभ्य ग्रंथों में आग लगवाकर भी उन्हें चैन नहीं मिला। एक भाई को खोकर उन्होंने अपना जीवन उन भटके हुए भाइयों को सही मार्ग पर लाने के लिए अर्पित करने का निश्चय किया। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से वो अपनी डगर पर निकल पड़ी। लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण। ये थी arparadio.com की प्रस्तुति।